मुक्तिबोध की आपत्ति यह है कि दर्शन स्वर्ग में श्रद्धा कई बार कहती है कि वह लोक अग्नि में तप चुकी है। मैं लोक अग्नि में तप नितांत आहुत प्रसन्न देती प्रशांत, पर हिमालय की घाटी में आकर साधना करना तो लोक अग्नि में तपना नहीं, उससे अलग हटना है। कुछ इसी प्रकार का तर्क दिनकर का है। वे भी कहते हैं कि सारे कर्मवाद को व्याख्यायित करके श्रद्धा अंततः मन को हिमालय के निर्जन प्रदेश में ले जाती है, जहाँ कर्म की संभावना नहीं। जहाँ तक लोक अग्नि का लाक्षणिक प्रयोग है, इसका मूल संदर्भ श्रद्धा का जननी रूप है, और इसीलिए जहाँ लोक अग्नि का प्रयोग आता है, वहाँ मातृमूर्ति का भी चित्र उभारा गया है। ईड़ा के प्रति कहे गए श्रद्धा के ऊपर उद्धृत वाक्य का मूल भाव यही है कि श्रद्धा ने सृजन की पीड़ा झेली है और फिर गृहस्थ जीवन के घात प्रतिघातों को झेला है, जबकि ईड़ा इस सब से अलग रही है। माँ का रूप और गृहस्थ जीवन सामाजिक जीवन में समायोजन और सहिष्णुता की पहली सीढ़ी है, और उस समय तो और भी अधिक, जबकि सामाजिक जीवन और संगठन का सूत्रपात हो रहा था। श्रद्धा के लिए मन और कुमार के साथ विविध अनुभव लोक अग्नि की ही आंच है। लोक अग्नि का और व्यापक समाज सेवा का रूप तो क्रमशः आगे चलकर विकसित होता है। इसीलिए दर्शन स्वर्ग में मातृमूर्ति की महिमा कई बार व्यंजित की गई है। वह लोक अग्नि में तप गल कर थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बनकर मन ने देखा कितना विचित्र वह मातृमूर्ति थी विश्वमित्र। और फिर मन श्रद्धा से कहते हैं, तुम देव आह कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। श्रद्धा पहली माँ है और सृजन की पीड़ा से गुजरने के कारण तथा मनुष्य की पहली गृहस्थी शुरू करने में उसने शरीर की सीमाओं को तोड़कर अपने व्यक्तित्व को विस्तार दिया है। यह लोक अग्नि को प्रज्वलित करने का पहला उपक्रम है। उसमें तपने की बात तो सभ्यता के विकास में आगे आती है। कामायनी के अंतिम अंश में श्रद्धा का यह मात्र रूप ही स्त्रीहणीय भाव से अंकित किया गया है, जो देव सृष्टि में अकल्प्य था। दिनकर की आपत्ति कथा के स्थूल स्तर पर है। जैसा पहले कहा जा चुका है, कामायनी में कथा का वह स्थूल रूप ही नहीं है, पर यदि सचमुच पढ़ते समय कथा पर आग्रह रहे तो किसी हद तक यह असंगत कही जा सकती है कि मन और श्रद्धा व्यावहारिक संसार क्षेत्र को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। तब कथा के इसी धरातल पर आपत्ति का शमन किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जीवन के अनेक घात प्रतिघातों के बाद मन और श्रद्धा या संन्यास की ओर उन्मुख होते हैं, तो भी गृहस्थ रूप में। यह गृहस्थ और संन्यास का एक भाव स्तर पर मिलना है, जिसे अपने जीवन में आधुनिक युग के मनीषी रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी ने अपने अपने ढंग से प्रमाणित किया। वे युगल यहीं अब बैठे संस्कृत की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। इस तरह मन और श्रद्धा हिमालय पर कोई तपस्या नहीं करते, वे व्यावहारिक कर्म जीवन से कुछ अवकाश लेकर ही व्यापक सांसारिक जीवन में हिस्सा लेते हैं और अपने अनुभव और चिंतन को प्रसारित करते हैं। संसार से वे संपृक्त हैं, पर उसमें लिप्त नहीं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया को एक बिंदु से समग्र रूप में देख लेने के बाद लिप्त होने का प्रश्न रहता भी कहाँ है। भारतीय जीवन में पुस्तकीय ढंग से जीवन के अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए सुरक्षित कर देने के बाद और इस सब का महिमागान करने के साथ लोगों को यह छूट मिल गई कि कभी अवकाश ग्रहण न करें। व्यवहार में अवकाश ग्रहण मृत्यु में ही माना गया, जीवन के चलते नहीं। इस प्रवृत्ति का रूप उत्तरोत्तर विकृत होता गया और स्वतंत्र भारत में तो देश को अभी हमारी जरूरत है के नाम पर लोग एक सेवा से निवृत्त होते हैं दूसरी सेवा स्वीकार कर लेने के बाद। कभी कभी तो लगता है कि देश में नौकरी की समस्या जवानों की नहीं बूढ़ों की है। प्रसाद ने मानवीय जीवन के इस पक्ष पर विचार किया था और वे जानते थे कि संन्यास को सर्वोच्च स्थित मानकर भी लोग इस ओर सच्चे मन से उन्मुख नहीं होते। अजात शत्रु नाटक में बिंबिसार महारानी वासुई से पूछते हैं, तुम कुछ समझती हो कि मनुष्य के लिए एक पुत्र का होना क्यों इतना आवश्यक समझा गया है? और वासुई द्वारा बताए गए कारण में वे आगे जोड़ते हैं, संसारी को त्याग तितिक्षा या विराग होने के लिए पहला और सहज साधन है। पुत्र को समस्त अधिकार देकर वितराग हो जाने से असंतोष नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग उसे भी समझता है। यहाँ बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्य संकेतित किया गया है। मन और श्रद्धा भी सारा अधिकार जैसे कुमार और ईड़ा को सौंप कर अपने सक्रिय जीवन को कुछ सीमित कर लेते हैं। मन स्वयं इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होते, तब श्रद्धा उन्हें फिर समझाती है, प्रिय अब तक हो इतने ससंग देकर कुछ कोई नहीं रंक। प्रसाद ने अब इस समूची प्रक्रिया में सन्यास का नहीं अवकाश ग्रहण का रूप जैसे अंकित किया हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह चक्र भी कहीं न कहीं थिराना चाहिए और यह स्वयं ही कुछ सजग रूप से इसे थिराया जा सके तो वही काम्य है। मनुष्य जीवन में स्वेच्छा से अधिकार त्याग की भावना विकसित हो पाना मानवीय संस्कृति के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। कवि ने मन का आदिम रूप ईर्ष्या सर्ग में अंकित किया है, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। इसके पूर्व भी मन ने घोषित किया है वासना सर्ग में, विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूत महान, सभी मेरी हैं, सभी करती रहे प्रतिदान। यही तो मैं ज्वलित बाड़ो वहनी नित्य शांत, सिंधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत। और ऐसे ही शब्दों की और भंगिमा में मन का ईड़ा से भी मतभेद उग्र होता है। मन के इस व्यक्तिवादी अधिकार प्रिय रूप को क्रमशः परिश्रमित करना कामायनी के कवि का कथा के स्तर पर एक प्रधान उद्देश्य रहा है। व्यक्तिवाद के परिश्रमन की इस वस्तु को दिनकर और मुक्तिबोध दोनों ने ही ठीक ठीक ग्रहण नहीं किया है। वस्तुतः कामायनी में सांस्कृतिक विकास की मूल रचना दृष्टि को समझ लेने पर पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होती है। सर्गों के नामकरण और कथा के स्थूल ढांचे से लेकर रचना दृष्टि के विकास तक की प्रक्रिया को कवि ने एक संश्लिष्ट विधान बनाया है और इसी से कामायनी जीवन की सूक्ष्म और तात्विक समस्याओं से जूझती हुई भी काव्य है, दर्शन नहीं। काव्य और दर्शन में अनुभव स्तर की समानता होने पर भी उनकी भाषिक सर्जन प्रक्रिया अलग अलग है। यदि प्रसाद की ही शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहें तो कह सकते हैं कि दर्शन में तर्क और विवेक की प्रक्रिया पर बल अधिक है, जबकि काव्य में आनंद की प्रधानता है। इसी से संबद्ध दर्शन की एक सीमा है। दर्शन जीवन का इतनी दूर तक और इतनी एकाग्रता के साथ विश्लेषण करना चाहता है कि इस सारी प्रक्रिया में विश्लेषण ही प्रधान और जीवन स्वयं उपेक्षित हो जाता है। यही कारण है कि तत्व की खोज करते करते दर्शन प्रायः व्यावहारिक जीवन से अलग हो जाता है, पर साहित्य का वैशिष्ट्य इसमें है कि वह जीवनानुभव का गहरा साक्षात्कार और संप्रेषण करते हुए भी जीवन की समग्र धारणा को पुष्ट करता चलता है। तत्व को महत्व देते हुए भी बाहरी रूप की पूरी चिंता रखता है। दर्शन की भाषिक प्रक्रिया में बहुत कुछ विज्ञान की तरह शब्दों के निर्दिष्ट और चौकस प्रयोग पर बल है। काव्य में शब्द का समूचा अर्थ न लेकर उसके अर्थ विस्तार की सजगता उत्पन्न करते हुए भी उसकी किसी वैकल्पिक छाया की ओर संकेत किया जाता है। कभी कभी एक शब्द की परस्पर मिलती जुलती अर्थ छायाओं के बीच तनाव उत्पन्न करके अर्थ और अनुभव को विकसित किया जाता है। काव्य में अर्थ का निश्चित रूप इसीलिए काम्य नहीं है कि वह ग्रहण किए जाने में एक बारगी खत्म न हो जाए। वहाँ अर्थ की एक दिशा है जिस ओर वह गतिशील होता रहता है। इसीलिए जीवन की ही तरह काव्य में अर्थ की अनंत संभावना है। दर्शन की भाषा में अर्थ का निश्चित रूप ग्रहण कराने के लिए दृष्टांत की बहुलता होती है। काव्य में अर्थ और अनुभव को विकसनशील बनाए रखने के लिए अप्रस्तुत विधान और बिंब योजना का केंद्रीय महत्व है। कभी कभी तो एक ही प्रकार के उपकरणों से दर्शन का दृष्टांत और काव्य बिंब दोनों बनते हैं। कुम्हार का घड़ा एक जगह दृष्टांत है, दूसरी जगह बिंब है। दर्शन में जहाँ वह दृष्टांत है वह उक्ति का एक माध्यम भर है जिससे जीवन के किसी एक पक्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है। घड़े का यह प्रयोग उसी तरह का है जिसे शिक्षा शास्त्र में दृश्य उपकरण विजुअल एड्स का उपयोग करते कहते हैं। पर जब कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहिं समाना, यहू तत् कथौ ज्ञानी, तो यहाँ घट का बिंब अर्थ के स्पष्टीकरण का साधन न बनकर स्वयं अर्थ के विकास की प्रक्रिया हो जाता है। इस माने में बिंब काव्य का दृश्य उपकरण न होकर अर्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जो क्रमशः अद्वैत की ओर उन्मुख होती है। यहाँ इस स्तर पर काव्य की प्रक्रिया जीवन के समतुल्य चलती है और उसे संपूर्ण भी बनाती है। मनुष्य के सारे ज्ञान विज्ञान और सर्जन का प्रधान लक्ष्य है घटनाओं की एक ढेरी से लगने वाले जीवन को सार्थकता प्रदान करना, या यदि और भी ठीक कहें तो उसमें अर्थ और अन्वित की अनुभूति विकसित करना। काव्य का लक्ष्य भी अपने ढंग से अर्थ को विकसनशील रखना है। काव्य और जीवन की ये प्रक्रियाएं समानांतर जैसी होती हुई भी परस्पर की टकराहट से एक दूसरे को शक्ति देती हैं। यह विरोधी स्थितियों के संघर्ष का द्वंद्व जैसा नहीं वरन मिलती जुलती प्रक्रियाओं का तनाव है। विशुद्ध भौतिक जीवन की द्वंद्व प्रक्रिया से रचनात्मक जीवन की द्वंद्व प्रक्रिया का यह अंतर है। काव्य और जीवन में जीवन के तनाव में से अर्थ की विराट सृष्टि का उपक्रम कामायनी में होता है जो दर्शन की नहीं साहित्य की अपनी विशिष्ट क्षमता है।